हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कुछ देर बाद अर्णव अपने कैबिन में बैठा था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी पर्सनैलिटी और कपड़ों से वो बॉडीगार्ड लग रहा था। अर्णव के सामने एक फाइल रखी थी जिसके फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में धृति अवस्थी लिखा था। अर्णव उस फाइल को दो बार बड़े ही ध्यान से पढ़ चुका था। उसके चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे, पर उसके चेहरे के भावों से ये पता लगाना जरा मुश्किल था कि उसके दिमाग में इस वक्त आखिर क्या चल रहा था। कुछ देर तक उस कैबिन में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। अर्णव खामोशी से उस फाइल को घूरता रहा, फिर उसने निगाहें उस आदमी की तरफ उठाईं और कठोर लहजे में बोला, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली तुम्हें? यस सर, अभी तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है। जिस चौल में वो रहती थी, कुछ दिन पहले ही पूरी चौल में आग लग गई थी। अब वहाँ के लोग कहाँ गए इसका कोई अता पता नहीं। उनकी माँ भी कहाँ गई अभी तक इसका पता नहीं चला है, इसलिए अभी वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। उनके कॉलेज और जहाँ वो काम किया करती थी वहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन मिली वो सब इस फाइल में है। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, अगर आगे कुछ और पता चलता है तो मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से जल्दी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। यस सर, उस आदमी ने सर हिलाया और वहाँ से चला गया। अर्णव ने अब एक बार फिर उस फाइल के पन्ने पलटते हुए उस पर लिखी इन्फॉर्मेशन पढ़ी और फिर फाइल बंद करते हुए खुद से बोला, वही कॉलेज, वही नाम, वही चेहरा, पर दोनों इंसानों के नेचर और व्यवहार में जमीन और आसमान का अंतर है। कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने जो तुम्हारे बारे में बताया वो उनकी बातों से बिल्कुल जुदा है जो तुम्हारे ऑफिस के बॉस और वहाँ काम करने वाले लोगों ने बताया है। स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने जो कहा वो आज जो धृति मेरे सामने है उससे मिलता है, पर कॉलेज वाली धृति अलग ही थी। ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों अलग अलग इंसानों की बात कर रहे हैं, जैसे एक शक्ल के पीछे दो अलग अलग जगहों पर दो पर्सनैलिटी उभर कर बाहर आई हैं। मैंने जिस धृति को देखा वो तुम्हारी उस पर्सनैलिटी से मेल खाती है जिसे तुम्हारे पुराने ऑफिस में सबने देखा है जो तुम स्कूल में थीं। पर जो मुझे पहले तुम्हारे बारे में पता चला था वो कॉलेज वाली इन्फॉर्मेशन से मेल खाता है, पर आपस में दोनों बिल्कुल जुदा हैं। जैसी तुम कॉलेज में थीं उससे साबित होता है कि तुम्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर तुम्हें इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप कैसे मिली? स्कूल और कॉलेज की धृति में इतना अंतर कैसे है? जैसे ये एक नहीं दो अलग अलग शख्स हों, पर यह कैसे मुमकिन है? कैसे हो सकता है ऐसा? क्या हो तुम धृति? क्यों दिन ब दिन इस उलझी पहेली को सुलझाना और भी मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए? आखिर कौन सा रूप तुम्हारा असली रूप है? अब भी मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। आई होप कि जल्दी ही मुझे तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अर्णव ने गहरी सांस ली और चेयर से सर टिकाकर आंखें मूंदकर बैठ गया। कुछ देर बाद वो धृति के साथ मीटिंग के लिए निकल गया। दोनों होटल लॉबी में पहुंचे ही थे तभी अचानक अर्णव का फोन बजने लगा। अर्णव ने धृति को वहीं ठहरने को कहा और साइड में जाकर कॉल रिसीव की। हेलो मिस्टर बख्शी। हेलो सर, मैं उनकी पीए बोल रही हूँ। धृति जी की फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई है जिसके कारण उन्हें जल्दबाजी में घर जाना पड़ा, इसलिए आज वो आपसे मीटिंग के लिए नहीं आ सकेंगी। उन्होंने इनकन्वीनियंस के लिए आपसे माफ़ी मांगी है और कहा है कि जल्दी ही वो खुद से आपको फिर से कॉन्टैक्ट करेंगी। अर्णव को ये सुनकर गुस्सा तो आया, पर बात फैमिली की थी इसलिए उसने गहरी सांस छोड़ते हुए शांत स्वर में कहा, ओके, उन्हें कहिएगा कि अभी अपनी फैमिली को देखें। बिजनेस तो सारी जिंदगी चलेगा, डील तो बाद में भी होती रहेगी, इसलिए अभी अपनी फैमिली पर ध्यान दें। उनके आगे इस डील और बिजनेस की कोई कीमत नहीं। जल्दी ही हम दोबारा मिलेंगे और उनके साथ काम करना हमारे लिए गर्व की बात होगी। ओके सर, मैं आपका मैसेज धृति जी तक पहुँचा दूंगी। थैंक यू सो मच सर, और वंस अगेन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अर्णव ने फोन काटा और वापस धृति के पास चला आया जो तब से उसे ही देख रही थी। धृति ने अर्णव को देखते ही सवाल किया, क्या हुआ? कुछ नहीं, मीटिंग कैंसिल हो गई है तो अब हमें वापस ऑफिस जाना है। ओहो, धृति ने होठों को गोल करते हुए मायूसी भरी आवाज निकाली, फिर मुंह लटकाकर खड़ी हो गई। पहली बार किसी मीटिंग में आई थी और वो भी कैंसिल हो गई। यही बात उसकी उदासी की वजह थी जिसे अर्णव बखूबी समझ रहा था। धृति की उदासी दूर करने के लिए अर्णव ने उसकी हथेली थामते हुए कहा, इट्स ओके, इसमें इतना उदास होने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। अगली बार जब मीटिंग होगी तब मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊंगा। अब उदासी छोड़ो और चलो, पहले लंच करते हैं फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। धृति ने सर हिला दिया। अर्णव उसकी हथेली थामकर आगे बढ़ गया। धृति दी उसके कदम से कदम मिलाते हुए चल दी। अभी वे कुछ कदम चले ही थे कि तभी एक अनजान सी आवाज उनके कानों से टकराई। धृति, किसी ने धृति को पुकारा था और धृति के साथ साथ अर्णव के आगे बढ़ते कदम भी ठहर गए थे। दोनों ने आवाज की दिशा में निगाहें घुमाई तो उनके बाएं तरफ चंद कदमों की दूरी पर एक लड़का खड़ा था जो धृति की ही उम्र का लग रहा था और पहनावे से किसी अच्छे घर का लड़का लग रहा था। धृति को देखकर वो लड़का मुस्कुराते हुए उसके पास चला आया। हाय धृति, कहते हुए वो लड़का धृति के गले लगने को हुआ, जैसे उसे बहुत करीब से जानता हो और बहुत गहरा रिश्ता हो उनका, जबकि धृति उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे जानती ही न हो। उस लड़के को धृति के गले लगते देखकर अर्णव, जो गहराई से दोनों के चेहरे के भावों को देख रहा था, गुस्से में अपनी मुट्ठी कस गया, जबकि धृति उस अनजान इंसान को अपने करीब आते देखकर घबरा कर दो कदम पीछे हट गई और हड़बड़ाते हुए बोली, हाय हाय। धृति की जबान लड़खड़ा गई और वो उस लड़के को यूं देखने लगी जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उस लड़के ने जब धृति के घबराए हुए चेहरे और आंखों में अपने लिए बेगानापन देखा तो चौंकते हुए बोला, धृति, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? ये कैसे अजनबी जैसे नजरों से देख रही हो तुम मुझे, जैसे मुझे जानती ही नहीं। मात्र चंद महीनों में तुम अपने कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड को भूल गई। याद नहीं तुम्हें कि कितने कांड किए थे हमने साथ में? उसकी बातें सुनकर धृति के माथे पर सिलवटें पड़ गईं और चेहरे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। उसने चोरी छिपे निगाहों से अर्णव को देखा तो उसकी निगाहें खुद पर टिकी पाईं, जिससे धृति और ज्यादा घबरा गई, पर जल्दी ही अपनी घबराहट को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया। याद है, सब याद है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो तुम? वापस कब लौटी तुम दिल्ली से और मुझसे मिली क्यों नहीं इतने वक्त में? उस लड़के ने बहुत सहजता से उसके सवाल का जवाब देते हुए उससे नाराजगी भी जाहिर की। उसका सवाल सुनकर धृति ने भी सहजता से जवाब दिया, थोड़ा बिजी थी इसलिए मिल नहीं सकी। पहले तो धृति का जवाब सुनकर वो लड़का खामोशी से उसे तकता रहा, जैसे धृति के चेहरे में कुछ खोज रहा हो, फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए आगे बोला, वैसे धृति, कॉलेज में तो तुम मॉडर्न बनकर रहती थी और चंद महीनों में तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल और टेस्ट इतना बदल गया, ये देखकर मुझे हैरानी हो रही है। कॉलेज में तो मैंने तुम्हें कभी सूट या इंडियन वेयर में देखा ही नहीं और आज तो तुम मेरे सामने इस इंडियन लुक में खड़ी हो। लग तो तुम इसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर पहले तो मैंने तुम्हारे इस बदले रूप को देखकर तुम्हें पहचान ही नहीं सका था। मुझे लगा जैसे मेरी निगाहों का धोखा है। जिस धृति को मैं जानता था उसे तो सूट दुपट्टे इन सबसे बहुत चिढ़ थी, पर आज तो तुम कोई और ही लग रही थी। उसका सवाल सुनकर धृति पर एक बार फिर उसकी घबराहट हावी होने लगी। उसने अपने हाथ की उंगलियों को आपस में उलझाना शुरू कर दिया और जरा हकलाते हुए बोली,
वो माँ को मेरा वैसे कपड़े पहनना पसंद नहीं था तो उनकी खुशी के लिए खुद को थोड़ा बदल लिया। धृति का ये अटपटा सा जवाब सुनकर जहाँ अर्णव की निगाहें समुद्र सी गहरी हो गई, उस लड़के के चेहरे पर भी अजीब से भाव उभर आए, जैसे उसके इस जवाब से वो संतुष्ट ना हो। पर फिर उसने सर हिलाया और धृति के बगल में खड़े अर्णव को देखते हुए बोला, ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ और तुमने शादी कब कर ली? किसी को कुछ बताया भी नहीं? धृति ने एक नज़र अर्णव को देखा फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया, पति है मेरे, जल्दबाजी में शादी हुई इसलिए बता नहीं सकी। धृति का जवाब सुनकर उस लड़के ने हैरानगी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए कहा, स्ट्रेंज, तुमने शादी कर ली? मुझे अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। मतलब कॉलेज टाइम पर तो तुम शादी के सख्त खिलाफ थी और जिंदगी को खुलकर एंजॉय करने की, ऐश करने की बात करती थी, और अब कॉलेज खत्म हुए चंद महीने ही हुए हैं और तुमने शादी कर ली? धृति बस मुस्कुरा कर रह गई, शायद उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। उस लड़के ने आगे कहना जारी किया, धृति, तुम चंद महीनों में बहुत ज्यादा बदल गई हो। मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं, या फिर हमें मिले सालों बीत गए हैं, हम बेस्ट फ्रेंड थे, पर आज तुम्हें देखकर मुझे अनजानों जैसे वाइब्स आ रही हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि चंद महीनों में तुम इस कदर बदल जाओगी कि मैं तुम्हें पहचान भी न सकूं। ऐसा लगता है जैसे तुमने खुद को पूरी तरह बदल लिया है। चेंज नेचर का रूल है, वक्त और हालात के हिसाब से सबको बदलना ही पड़ता है। धृति का जवाब सुनकर वो लड़का उसे अचरज से देखने लगा। धृति हौले से मुस्कुरा दी, तुम यहाँ कैसे? किसी काम से आए होगे ना? तुम अपना काम करो, हम कभी बाद में फुर्सत में मिलकर बातें करेंगे।
मैं फोन करूंगा तुम्हें, धृति ने सर हिला दिया।
वो लड़का बाय कहकर और अर्णव से फिर मिलने का बोलकर वहां से चला गया। शायद उसे भी यहां कुछ अजीब लग रहा था। उसके जाने के बाद धृति ने गहरी सांस ली, मानो बहुत बड़ी मुसीबत टल गई हो। पर अभी उसने ठीक से सुकून की सांस भी नहीं ली थी कि उसके कानों में अर्णव के शब्द पड़े और उसकी सांसें अटक गईं। दिल्ली कब गई तुम? धृति ने सवाल सुनकर पलट कर देखा तो अर्णव भौहें सिकोड़े उसे ही घूर रहा था। घबराहट के मारे धृति का गला सूखने लगा। उसने अपने सूखते गले को थूक निगलते हुए तर किया। शादी से पहले धृति की जुबान शुरू में लड़खड़ा गई, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। अभी वो खुद को ठीक से सहज भी नहीं कर सकी थी। अर्णव ने उस पर अगला सवाल दागा, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम कभी वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहनती, फिर जो उस लड़के ने कहा वो क्या था? अर्णव का ये सवाल सुनकर धृति उससे नजरें चुराने लगी। ये देखकर अर्णव की भौहें तन गई। उसने धृति की बाँह पकड़कर उसको अपने सामने खड़ा कर लिया और भौहें सिकोड़े उसे घूरते हुए दांत पीसते हुए बोला, धृति सच सच जवाब देना, वो जिसकी बात कर रहा था वो तुम नहीं थी ना? तुम उसे नहीं जानती थी ना? अर्णव के सवाल धृति की घबराहट को बढ़ा रहे थे, पर उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया और उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो कॉलेज टाइम पर मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं उसे कैसे नहीं जानूंगी? धृति का जवाब सुनकर अर्णव ने गुस्से में अपने जबड़े भींच लिए और भौहें सिकोड़े उसे घूरते हुए दांत पीसते हुए बोला, अच्छा तो बताओ कि क्या नाम था उसका, और उसे देखकर तुम इतनी घबरा क्यों गई थी? जब वो तुम्हारे गले लगने आया तो तुमने अपने कदम पीछे क्यों हटा लिए? बेस्ट फ्रेंड था ना वो तुम्हारा, फिर इतनी जल्दी उससे भगाकर उससे पीछा छुड़ाने में क्यों लगी थी तुम? अर्णव के सवाल धृति की घबराहट को बढ़ा रहे थे, पर उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया और उसकी निगाहों से मिलाते हुए बोली, हेमंत नाम है उसका, चाहे तो जाकर पूछ लीजिए। बहुत वक्त बाद अचानक उसे सामने देखकर हैरान थी मैं। आप मेरे साथ थे इसलिए उसके करीब आने से अपने कदम पीछे हटाए मैंने, ताकि आपको एक और नया बहाना न मिले मेरे कैरेक्टर पर शक करने का। पहले ही आपकी सोच मुझे लेकर इतनी खराब है, नहीं चाहती थी कि आप कुछ और नए लांछन लगाएं मुझ पर, इसलिए उसे जल्दी से जाने को कहा। मिल गए ना आपको आपके सब सवालों के जवाब? अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि वो मेरा ही दोस्त है। तो मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। धृति की आंखें पनीली थीं। अर्णव ने आगे एक शब्द नहीं कहा, कुछ सेकंड खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसकी बाँह छोड़कर होटल से बाहर निकल गया। धृति ने अपने आंसू पोंछे और अपनी बाँह सहलाते हुए उसके पीछे पीछे चल दी। लंच में दोनों ने बेमन से थोड़ा सा खाना खाया, उनके बीच अजीब सी खामोशी छाई रही। लंच के बाद दोनों वापस ऑफिस चले आए और अपने अपने कैबिन में चले गए।